आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स की है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से और अभी मैं LLB कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम फर्स्ट ऑडियो में पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लेखक ने बाढ़ जैसी आपदा के बारे में बहुत कुछ सुना था पर कभी देखा नहीं था। उसने बाढ़ जैसे विषय पर लिखना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहली बार 10th क्लास में लिखा था और उसे पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद से उसने और कई चीजें, कई उपन्यास और रिपोर्टाज भी लिखे थे, लेकिन कभी खुद से बाढ़ को भोगा नहीं था। मतलब कभी खुद बाढ़ में फंसा हो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ 1967 में, जब लेखक पटना में था। तब वहां 24 घंटे लगातार बारिश होने की वजह से हर जगह पानी भर गया था, जब सब कुछ वहां डूबने लग जाता है। लेखक अपने एक मित्र के साथ मिलकर रिक्शे पर बैठकर बाहर माहौल देखने जाते हैं कि मतलब कहां तक कितना कितना पानी आ चुका है और आगे की क्या आसार हैं, कितने घंटों में कहां तक पानी आ जाएगा, कितना जो शहर है जितना कितनी दुकानें हैं जो डूब जाएंगी, ये सब मुआयना करके वो वापस आ जाता है अपने घर पे। लेकिन वो सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती है, तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, लिखूं, पर लिखने के लिए भी क्या, कविता लिखूं, किस पर, शीर्षक क्या होगा, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, नहीं, यह एक उत्तम विचार नहीं लगा उसे कि नहीं अभी लिखने का विचार सही नहीं है। नींद तो नहीं आती है लेखक को, लेकिन वो स्मृतियों में खो जाता है, यादों में खो जाता है। पुरानी यादें जो है वो आंखों के सामने चलने लगती हैं, पुराने दृश्य जो हैं वो सामने उभर कर आ जाते हैं। तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने फर्स्ट ऑडियो में छोड़ा था। ये पेज नंबर 6 का लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, पेज नंबर 6 लास्ट पैराग्राफ। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला। तब पूर्णिया जिला के अंदर आता था मनिहारी, अब ये कटिहार जिला के अंदर आता है। के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, कि दवा दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। लेखक 1947 की यादों में डूब जाता है, 1947 के बारे में जो हुआ था उसको याद करता है। लेखक ने पहले ही बताया था कि उसने स्वयंसेवक और राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते हैं उनके रूप में वह काम कर चुका है, कर रहा है। तो ये उस समय की बात है 1947 की, कि लेखक एक इलाके में जा रहे हैं अपने गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी जी के साथ, जहाँ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जहाँ गंगा से बाढ़ आई है वहाँ पर पीड़ित क्षेत्र है, वहाँ लोग हैं। तो इनको ये नाव पर वहीं जा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो ये कहते हैं कि चलो जरा देख कर आते हैं कि वहाँ कैसा माहौल है। तो भादुड़ी जी कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि तुम कभी भी वहां जाने से पहले ये मत भूलना कि वहां पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हर प्रकार के प्राणी, हर प्रकार के शरणार्थी तुम्हें मिलेंगे। मतलब शरणार्थी के रूप में सिर्फ मनुष्य नहीं होंगे, शरणार्थी जो शरण ले लेते हैं आकर, तो जो पनाह ले लेते हैं, उनमें सिर्फ इंसान नहीं होते। और सच में जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और यहाँ तक कि लोमड़ी सियार तक वहां जाके शरण लेते हैं, पनाह लेते हैं। तो मतलब वो भी शरणार्थी के रूप में वहां उपस्थित
होते हैं। और भादुरी जी और भी हिदायत देते हैं कि और कुछ हो या ना हो, तुम्हारी नाव में हमेशा, हर नाव में जितनी भी नाव है जो पीड़ित क्षेत्र पर में जा रही है, उनकी मदद करने के लिए जा रही है, वहाँ पका ही घाव जरूर होना चाहिए। मतलब पानी में डूबे रहने से पैरों की उंगलियां जो हैं वो सड़ जाती हैं, उनमें घाव हो जाता है बहुत बुरी तरह। तो उसको ठीक करने की, उस पर लगाने की जो दवा होती है वो जरूर तुम्हारे पास होनी चाहिए, और माचिस की डिब्बी होनी चाहिए और मिट्टी का तेल भी रहना चाहिए। और लेखक कहता है कि सही बात भी है, हम जहाँ भी जाते हैं, पीड़ित क्षेत्र में जाते हैं, शरणार्थियों के पास जाते हैं उनकी मदद करने, तो वहाँ खाने पीने की चीज मांगने से पहले हर कोई पका ही घाव की दवा और दिया सलाई माचिस की मांग होती है। सबसे पहली मांग उन लोगों की यही होती है। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर कुकुर, कुकुर नहीं कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी, मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। घरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मना कर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धा गिड़गिड़ चकेके चकदुम चकेके चकदुम चकदुम चकदुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवारी नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बॉय स्काउट में था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गाँव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। 1949 में लेखक महानंदा की बाढ़ से घिरे थाने के एक गांव में पहुंचता है और उनके साथ उनकी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर भी थे। कई बीमार लोगों को चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार आदमी के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, कुत्ता नहीं जाएगा, कुत्ते को भगाओ। बीमार आदमी एकदम से नाव से उतर जाता है पानी में और कहता है कि अगर हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और फिर बाद में कुत्ता भी पानी में कूद जाता है। ऐसा लगता है मानो कह रहा हो कि हमारा आदमी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक बार लेखक परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए गए। खबर ये मिली थी कि वहां कई दिनों से कोई मदद नहीं पहुंची थी, तो लोग चूहे और मछली को ऐसे ही झुलसा कर खा रहे हैं, बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ढोलक मंजीरे की आवाज आ रही है। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ एक ऊंची सी जगह को मचान बनाकर स्टेज की तरह सजा दिया गया है और वहाँ नाच हो रहा था। एक लड़के को, एक काले कलूटे लड़के को साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाया गया था और ये दिखाया जा रहा था कि जो दुल्हन है वो घर छोड़कर अपने मायके जा रही है और जो उसका पति है वो उसको मना कर रास्ते से वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा है, और इसके साथ ही धागिड़गिड़ ढोलक भी बज रही है। इसको देखकर लोगों के बीच में एक हंसी की लहर गूंज उठती है, लोग खिलखिला उठते हैं। लेखक सोचता है कि क्या हम रिलीफ बांटकर भी उन्हें ऐसी हंसी दे पाएंगे। असल में मुश्किल के समय आपका साहस और आपका धैर्य ही आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। वो लोग अपनी परिस्थितियों से परेशान होने के बजाय, रोध होकर बैठने के बजाय उसको इंजॉय कर रहे थे। किसी तरह इन दुखी लोगों के बीच खुशी बांटने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद ही वहाँ थोड़ा सरल सा माहौल बनाना चाहते थे ताकि लोग इतने दुखी ना रहें, तो इसलिए वो लोग नाच गाना कर रहे थे। तो वही लेखक सोचता है कि क्या राहत सामग्री बांटकर भी हम ऐसी खुशी इन्हें दे पाएंगे जैसी वो खुद ही कर रहे हैं, अपने आप को बांट रहे हैं आपस के लोगों में। लेखक को अपने मित्र भोला शास्त्री की याद आती है। वो कहता है कि बलवाही नाच की बात उठते ही पता नहीं मुझे अपने मित्र भोला शास्त्री की याद क्यों आती है। एक बार ये हुआ था 1937 में कि सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। लेखक उस समय बॉय स्काउट था, बालचर गांव के लोग, नाव नहीं थी तो इसलिए केले के पौधे का जो भेला होता है उसको किसी तरह नाव बनाकर उससे ही मदद ले रहे थे पानी के ऊपर तैरने के लिए। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार करने निकले थे। मतलब लोग जहाँ इतनी मुश्किल में थे कि वो केले के पौधे को भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, वहीं जो जमींदार का लड़का है वो अपनी नाव पर हारमोनियम तबला के साथ घूम रहा था। तो गांव के जो नौजवान लड़के थे उन्होंने मिलकर उसकी नाव छीन ली और फिर वहां थोड़ी मारपीट भी हुई थी। आगे बढ़ेंगे। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, होजी होजी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्टियों की वर्षा कर दी और इस कोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नया तोरी मंझधार होशियार होशियार। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में भी घुस गया तो कुछ युवक और युवती सजे धजे नाव पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म में देखे हुए किसी सीन के जैसे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकले हैं ये लोग। नाव पर एक स्टोव जल रहा था जिस पर केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए रखे थे, एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर नेस्कैफे पाउडर को मथ रही थी, शायद एक्सप्रेसो बना रही होगी, दूसरी लड़की मन लगाकर कोई रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी और एक युवक बस बैठा हुआ था और एक नाव को खे रहा था, नाव चला रहा था। दूसरा युवक जो पत्रिका पढ़ रही है उस लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था, ट्रांजिस्टर पर गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए। ये नाव इनके ब्लॉक गोलंबर के पास पहुंची ही थी कि अचानक से ब्लॉक की सारी छतों पर लड़के खड़े थे वो एक साथ ही कुछ आवाजें निकालने लगते हैं, किलकारियां मारते हैं, सीटी बजाते हैं, एक साथ करते हैं और गोलंबर में आवाज जो है वो प्रतिध्वनि करती है, बार बार गूंजती है। तो ये सब मिलाकर जो आवाज निकली, इन सारी ध्वनियों का जो संयोजन हुआ, इनको मिलाकर जो आवाज हुई, जो ध्वनि उत्पन्न हुई, वो ऐसा लगता है कि किसी बड़े से बड़ा संगीत निर्देशक भी ये नहीं कर पाता, ऐसी ध्वनि को उत्पन्न नहीं कर पाता जैसे इन लोगों ने, इन लड़कों ने जो छत पर थे, इन्होंने किलकारियों, सीटियों और पपटियों से ये ध्वनि उत्सर्जित की थी, उत्पन्न की थी। उन युवकों का सारा एग्जिबिशनिज्म जो था वो गायब हो गया। युवतियों के लाल होंठ जैसे मानो काले पड़ गए हों। नाव पर एक अकेला ही ट्रांजिस्टर था जिस पर बज रहा था, नया तोरी मंझधार होशियार होशियार। मतलब जो तेरी नाव है वो बीच मंझधार में फंसी है, बीच धारा में फंसी है, होशियार हो जाओ। काहो राम सिंगार, पनिया आ रहलो है, उहू ना आती रहलो है। ढाई बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया, लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप, कोई कहता है कि राम सिंगार पानी आ रहा है तो कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं आया है। रात के ढाई बज चुके हैं लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। ऐसा लगता है जैसे पानी कहीं अटक गया है, या फिर जहां तक उसे आना था वहां तक आया और रुक गया, या फिर हो सकता है जो इंजीनियर इस पानी को रोकने की लड़ाई में लगे हुए हैं, शायद उन्हें कोई जीत मिल गई है, शायद उन्होंने पानी को रोकने में कामयाबी पा ली है और पानी को रोक दिया है, या फिर कोई दैवीय चमत्कार हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक पानी यहाँ आ चुका होता। क्योंकि पानी अगर कहीं भी जाएगा तो जाएगा किधर से, रास्ता तो इधर से ही है, जाएगा इधर से ही। सभी चारों ब्लॉकों में जो फ्लैट हैं उन सब की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, क्योंकि सभी जगे हुए हैं। कुत्ते कभी कभी एक साथ भौंकने लग जाते हैं और राम सिंगार की मंडली उन्हें डांट कर चुप करा देती है। आगे, मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंगा उठाया, बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था, एकदम कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ, कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए, नहीं फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। अचानक से लेखक को अपने मित्रों की याद आती है जो पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड आदि में रहते हैं, जहां पर जल पहले ही पहुंच चुका है और वो लोग जल में घिरे हुए हैं। जितेंद्र, विनीता, बाबू भैया, इंदिरा, पता नहीं ये लोग कैसे हैं, किस हाल में होंगे। लेखक ने पड़ोस में जाकर उन्हें फोन करने के लिए चौंगा भी उठाया था, मतलब फोन भी किया था, लेकिन बहुत देर तक नंबर डायल किया, उधर से कोई जवाब नहीं आया, किसी ने फोन नहीं उठाया, एकदम सन्नाटा है। सुन शांति, बिस्तर पर करवट बदलते हुए एक बार फिर से लेखक को मन में होता है कि कुछ लिख लेना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, और क्या ऐसे में लिखना संभव है, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए, नहीं फिर से स्मृतियों को जगाऊं तो क्या ये अच्छा है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो फिर से पुरानी यादें ताजा होंगी। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में एक गर्भवती औरत इनकी ओर गाय की तरह देख रही थी कि किसी तरह ये जाएंगे और उसकी मदद करेंगे, तो ये याद जो है फिर से ताजा हो जाती है, लेखक फिर से यादों में जाता है। आगे पढ़ेंगे, नहीं अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं, उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूं, मूंदता हूं, काले को उजला करना चाहता हूं, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। लेखक दिमाग में अचानक से आई इस याद को एकदम से झुटला देता है कि नहीं, अब फिर से पुरानी बातों को याद नहीं करना है, इससे अच्छा है कि आंखें बंद करके एक सफेद भेड़ों के झुंड को देखने की कोशिश करूं, साफ सुथले सफेद सफेद भेड़ों के झुंड। लेकिन अचानक से उसे सभी जो सफेद भेड़ हैं वो काले नजर आते हैं। आंखें बंद करता है, मूंदता है, लेकिन वो काले भेड़ काले ही रहते हैं। लेखक कोशिश करता है कि शायद दोबारा फिर से आंखें बंद करूं तो उसे सफेद भेड़ दिखाई दे, सफेद भेड़ों का झुंड दिखाई दे, भेड़ों के झुंड जो है वो भूरे हो जाए, लेकिन फिर उजले भेड़, कभी काले भेड़, कभी उजले कभी काले, उसे काले भेड़ों का झुंड जो है वो बार बार दिखाई दे रहा है। ओई खागो ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गैलो, हो राम सिंगार, हो मोहन रामचन्नर, अरे हो। लेखक को जब जगाया जाता है उस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं, सुबह हो चुकी है, और कोई कहता है कि पानी आ रहा है पानी आ गया है, राम सिंगार, मोहन रामचरण, अरे ओ पानी आ गया है। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे भंगी बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है, वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। लेखक आंखें मलते हुए उठता है और देखता है कि पश्चिम की ओर जो थाना है वहां तक झाग फैन लिए पानी आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कल उसने कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ चलता हुआ ऐसा लगता है कि बच्चों का एक समूह जो है वो कूद कर किलोल करता हुआ आ रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो देखता है कि ये बच्चे नहीं है बल्कि पानी है, वहां पर मोड़ है, तो मोड़ से टकरा कर पानी जो है वो उछल कर आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो बच्चे के समान नजर आ रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर 1 नंबर ब्लॉक के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला जो है आया था। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की जो दुकान बाएं बाजू में लहरें नाचने लग जाती हैं, यहाँ तक भी पानी जो है वो आ चुका है। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव चीख पुकार और पानी का कलरव रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया पानी, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। कहे कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आ गए ले। लेखक दौड़ कर छत पर चला जाता है। चारों ओर से चीख पुकार की आवाजें आ रही है और पानी का जो कलरव है, पानी का जो शोर है वो अलग से। फुटपाथ को पार कर अब पानी जो है वो इनके गोलंबर पार्क में पहुंच चुका है और चारों तरफ नाच रहा है। चारों तरफ एक ही शोर है, आ गया पानी, बहुत तेज से आ गया है, आ रहा है, चढ़ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है, कहाँ का पानी है, क्या सोन नदी का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आ गया। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है, बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। सामने की दीवार जो है उसकी ईंटें डूबती जा रही हैं, पानी जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बिजली का खंभा डूब गया है, ताड़ के पेड़ का जो तना है वो भी डूब रहा है, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई, अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास।
लेखक कहता है कि यदि उसके पास एक कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वह इस जल प्रलय को, उसके तांडव को अपनी यादों में सुरक्षित करके रख लेता। बाढ़ें तो बहुत देखी थी, लेखक ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में उसने सहायता पहुंचाने का काम किया था, पिछले 10 सालों से वो कर रहा था, लेकिन इस तरह खुद कभी बाढ़ में फंसा नहीं था, इस तरह पानी को आते हुए नहीं देखा था। क्योंकि ये तो जब बाढ़ आ चुकी होती है तो जो वहां के जो शिविर होते हैं, शरणार्थी जहां पर होते हैं, वहां मदद पहुंचाने जाते हैं। लेखक ने खुद पानी को आते हुए कभी नहीं देखा था। ये भयंकर रूप पहली बार लेखक जो है बाढ़ के आने का, पानी का भयंकर रूप जो है पहली बार लेखक इसका सामना कर रहा था। बाढ़ तो बहुत आई लेकिन यह तो साक्षात जल प्रलय था। लेखक के देखते ही देखते चाय वाले की दुकान, गोल पार्क की हरियाली, सभी जलमग्न हो गए, सब जल में डूब गए। उसका कहना है कि अच्छा है, इस करुणामयी दृश्य के अंकन के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले वो कहता है कि काश मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर होता, मूवी कैमरा होता, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर होता भी तो क्या होता, आखिर क्या करता। अच्छी बात है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना दर्दमयी दृश्य को अंकित करके रखना, संजो कर रखना कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी कलम भी चोरी हो गई थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, बाढ़ ने सब कुछ ले लिया है। वो स्वयं को हतोत्साहित और उत्साह महसूस करने लगा है। उसे लगता है कि अच्छा है, मैं इस करुणामयी दृश्य को एकत्रित करके नहीं रखूंगा, अच्छा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी जो कलम है वो भी चोरी हो गई है, चोरी होने का मतलब बाढ़ बहाकर उसकी कलम को ले गई है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। और ऐसी स्थिति में लेखक खुद को असहाय महसूस करता है। इस प्रकार लेखक ने जल की विभीषिका को, बाढ़ की विभीषिका को वर्णित किया है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभ्यास पहला प्रश्न, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग नीचे का जो सामान था उसे ऊपर करने लगे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादा जाने लगा और आवश्यक वस्तु जैसे ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी आदि जमा कर बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरा प्रश्न, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? क्योंकि लेखक को गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ था, इसलिए लेखक पटना में रहते हुए वहां आई विभीषण बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए उत्सुक था। तीसरा प्रश्न, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? पानी कहाँ तक आ गया है, इससे जनसमूह की निम्नलिखित भावनाएं व्यक्त हुई हैं। यह आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं बाढ़ ज्यादा तो नहीं आ गई, यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कितनी बाढ़ आ गई होगी, यह जानने की उत्सुकता उत्पन्न हुई कि बाढ़ के बाद की अवस्था कैसी होगी, यह भय भी सताने लगा था कि अगर बाढ़ भयानक हुई तो फिर क्या होगा। चौथा प्रश्न, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? बाढ़ के गेरुआ झाग फैन से भरे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस भयानक बाढ़ में हजारों प्राणियों की जानें चली जाती हैं। पांचवा प्रश्न, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदा की स्थिति से पहले ही जान माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना चाहिए। अगर आपदा का आभास जो है वो पहले से हो गया है, पता चल गया है, तो उस स्थान से, सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, इससे बाढ़ जैसी आपदा का संकट कम होता है। जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए, छोटी छोटी नहरों को बड़े बांधों से पानी देकर पानी के दबाव को कम करना चाहिए। आवासों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जरा से संकट से वो गिरे ना, मजबूती से बनाया जाना चाहिए, जो जल्दी से हल्का हवा के झोंके से या हल्के पानी के बहाव से या भूकंप के बहुत हल्के झटकों से वो गिर ना जाए, मजबूती से बनाया जाना चाहिए जिससे कि जान माल का नुकसान जो है वो ना हो या फिर बहुत कम हो। छठा प्रश्न, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? उपर्युक्त कथन से लोगों की उस मानसिकता पर चोट की गई है जिसमें संकट के समय लोग एक दूसरे की सहायता करने के बजाय
केवल अपने स्वार्थों को महत्व देते हैं। यह समस्या हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब दूसरे लोग संकट की स्थिति में होते हैं, समस्या में घिरे होते हैं, तब कोई उन पर ध्यान नहीं आता, लेकिन जब वही समस्या उनके सर पर आ जाती है, उनके खुद के सिर पर आती है, उन पर आती है, तब उसी समस्या को वो देखते हैं और उसे समझ पाते हैं। जब तक दूसरों की समस्या है, तब तक वो उसका कोई समाधान खोजने की कोशिश नहीं करते। सातवां प्रश्न, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? बाढ़ के कारण लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया था, इसलिए दुकानदारों की बिक्री भी बंद हो गई। लेकिन बाढ़ के दृश्यों को देखने के लिए लोग तमाशबीनों की तरह पान की दुकान के पास एकत्र हो जाते, पान खाते और बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा करते, इस कारण पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आठवां प्रश्न, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब लेखक को अनुभव हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। नौवां प्रश्न, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खासतौर से हैजा, मलेरिया, आंत्रशोध, इन सभी बीमारियों के फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। दसवां प्रश्न, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? मनुष्य और पशु का संबंध न केवल आर्थिक है, न भावनात्मक भी है। इस संस्मरण में उसी भावनात्मक लगाव को दर्शाया गया है। जब वह नौजवान पानी में उतर जाता है, तो कुत्ता भी पानी में कूद गया, क्योंकि जितना प्रेम उस नौजवान इंसान को उस कुत्ते से था, उतना ही प्रेम उस कुत्ते को अपने मालिक से था। डॉक्टर के रूखे व्यवहार ने उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम को जगा दिया था, और जैसे ही वो नौजवान पानी में उतरता है, कुत्ता भी उतर जाता है। ग्यारहवां प्रश्न, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में इन सबके ना होने को अच्छा इसलिए कहा क्योंकि बाढ़ का विभत्स एवं मार्मिक दृश्य किसी सैलानी को अवश्य रोमांच या उत्साह का विषय हो सकता था, लेकिन एक संवेदनशील मनुष्य के लिए वह दृश्य अवश्य ही पीड़ा देने वाला है। क्योंकि लेखक एक संवेदनशील व्यक्ति है, इसीलिए दुख व विपत्ति की इस घड़ी में ना तो वह लिख सकता है और ना ही उसे कैमरे में कैद कर सकता है। बारहवां प्रश्न, आपने देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्या बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। काफी साल पहले एक बड़े समाचार चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें अलग अलग दल के 11 सांसदों को संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। मतलब उन्होंने इस बात के पैसे लिए थे कि वो संसद में सवाल पूछेंगे, जबकि सांसदों का तो काम ही है सवाल पूछना, लेकिन उन्होंने इसी काम को करने के लिए रिश्वत ली। संसद द्वारा एक संसदीय दल की जांच बैठाई गई, जांच में पाया कि इन सांसदों पर लगाए गए आरोप सही हैं। लोकसभा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। समस्या तब खड़ी हुई जब आरोपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो इस तरह मीडिया की कुछ घटनाएं कई बार समस्या के रूप में खड़ी हो जाती हैं, समस्या बन जाती है। 13वां प्रश्न, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। आपने कभी किसी आपदा को देखा है? किसी भी प्रकार की आपदा, कोई भी प्राकृतिक आपदा जिसको आपने देखा हो या फिर सुना हो किसी से, अपने करीबी से, दोस्त से, मित्र से, मम्मी पापा से, किसी से भी, अगर आपने देखा या सुना है तो उसको, उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। ये चैप्टर पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।